आप सुन रहे हैं महाभारत के पात्र सर ऑडियो पिटारा पर मेरे यानी अनामय वर्मा के साथ। महारानी अंबालिका के बेटे राजा पांडु महर्षि वेदव्यास के नियोग से जन्मे थे। नियोग से जन्मे थे का क्या मतलब हुआ? मनुस्मृति में बताया गया है कि नियोग विधि तब इस्तेमाल की जाती है जब कोई व्यक्ति संतान पैदा करने लायक न हो और उसे अपने लिए एक संतान की इच्छा हो, या किसी स्त्री के पति की बिन संतान मृत्यु हो जाए और उस स्त्री को एक संतान की जरूरत हो। तब किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो चाल चरित्र में अच्छा हो, समाज में जिसका सम्मान हो, जो नियोग विधि की जरूरत को समझता हो और उसका सम्मान करता हो, उसके साथ स्त्री संबंध बनाकर एक संतान को जन्म दे सकती है। लेकिन अगर पति जीवित है तो नियोग विधि के लिए पत्नी को पति से अनुमति लेना जरूरी है। नियोग प्रथा में इस बात का पूरा ध्यान रखना होता है कि इस संबंध के जरिए एक संतान पैदा करना ही लक्ष्य है। नियोग विधि का बिना किसी ठोस कारण के या किसी भी तरह से गलत इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। दरअसल महारानी अंबालिका महर्षि वेदव्यास के तेज को सहन नहीं कर पाई थी। वो उन्हें देखकर बहुत डर गई थी। नियोग के समय बहुत ज्यादा डर जाने से उनका रंग पीला पड़ गया था। इसका सीधा असर उनके गर्भ में बच्चे पर पड़ा और बच्चे का रंग हमेशा के लिए पीला पड़ गया। इसीलिए जन्म के बाद उस बच्चे का नाम पांडु रख दिया गया। राजा विचित्र वीर को तपेदिक, जिसे टीबी या ट्यूबरक्यूलोसिस कहते हैं, वो हो गया था, जिससे उनकी बहुत कम उम्र में ही मृत्यु हो गई थी। और कुरु वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई वारिस या उत्तराधिकारी पैदा नहीं हो पाया था। ऐसे में राजमाता सत्यवती ने अपने पहले बेटे कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को कुरु वंश की धारा को बचाए रखने के लिए जो भी उपाय हो सके करने की आज्ञा दी थी। आज्ञा का पालन करते हुए कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास के नियोग से महारानी अंबालिका ने पांडु को जन्म दिया था। बड़े भाई धृतराष्ट्र के नेत्रहीन होने की वजह से उन्हें राजा नहीं बनाया जा सकता था। उनकी जगह पांडु को हस्तिनापुर की गद्दी सौंप दी गई थी। पांडु एक बहुत ही कुशल शासक और एक बहुत अच्छे शिकारी भी थे। अपने पराक्रम से उन्होंने राज्य का काफी विस्तार कर लिया था। उन्होंने कई राजाओं को हराकर दिग्विजय यानी सभी दिशाओं पर विजय पाई थी। कहते हैं पांडु के शासन काल में हस्तिनापुर की समृद्धि बहुत बढ़ गई थी। पांडु धर्म पर चलने वाले महापराक्रमी और न्यायप्रिय राजा थे। उन्होंने 5-5 बहुत ही खास महायज्ञ भी करवाए थे। वो स्वभाव से बड़े ही दानी राजा थे। इसीलिए शत्रुओं से युद्ध में धन दौलत और बाकी जो कुछ भी उन्हें हासिल होता था, सब कुछ अपनी प्रजा में बांट देते थे। पांडु का पहला विवाह राजा कुंती भोज की बेटी राजकुमारी कुंती से स्वयंवर के जरिए हुआ था। लेकिन बाद में पितामह भीष्म के आदेश पर पांडु ने मद्र देश की राजकुमारी माद्री से भी विवाह किया था। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि राजा पांडु शिकार के शौकीन थे। ऐसे ही एक बार वो शिकार पर गए हुए थे। शिकार के दौरान जंगल में उन्होंने घनी झाड़ियों के पीछे एक हिरण हिरणी के जोड़े को देखा। दोनों अपने सुख में बेसुध थे। समय न गवाते हुए राजा पांडु ने तुरंत बाण साधा और चला दिया। बाण जाकर सीधे हिरण को लगा और वो बड़ी जोर से कराहता हुआ नीचे गिरा। नीचे गिरते ही हिरण एक ऋषि के रूप में बदल गया। ऋषिराज दर्द के मारे तड़प रहे थे। राजा पांडु आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दरअसल उस समय जंगल में वो ऋषि और उनकी पत्नी मृगरो यानी हिरण हिरणी के रूप धारण करके सुख भोग रहे थे। राजा पांडु अपनी करनी पर पछताने लगे। पर अब देर हो चुकी थी। उन ऋषिराज ने मरते मरते राजा पांडु को श्राप दिया था कि जिस तरह तूने मुझे मेरी अतृप्त अवस्था में मारा है, तेरी मृत्यु भी उसी समय होगी जब तू संभोग में होगा। महाराज पांडु उस श्राप के बाद से बहुत दुखी रहने लगे थे। उनके जीवन में सिर्फ पछतावा ही रह गया था। उनके मन में हमेशा प्रायश्चित की चिंता लगी रहती थी। आखिर एक दिन वो राजमहल की सारी सुख सुविधाएं और हस्तिनापुर का राजपाट पितामह भीष्म और बड़े भाई धृतराष्ट्र के हवाले करके कुंती और मात्री को साथ लेकर प्रायश्चित के लिए वन में चले जाते हैं। राजा पांडु ने कई वर्ष में कुंती और माद्री के साथ रहते हुए भी एक ब्रह्मचारी सा जीवन बिताया था, लेकिन एक चिंता उन्हें जंगल में भी चैन से नहीं रहने देती थी। वो चिंता थी कि उनकी कोई संतान न होना। राजा पांडु यही सोचते रहते थे कि राजवंश आगे कैसे चलेगा, कौन हस्तिनापुर का राजपाट आगे संभालेगा। महाराज पांडु के मन का हाल उनकी दोनों पत्नियां जानती थी। उन्हें पता था कि पांडु संतान चाहते हैं, पर ऋषि के श्राप से डरकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। महाराज पांडु का दुख दोनों पत्नियों से देखा नहीं जा रहा था। तब एक दिन महारानी कुंती महाराज पांडु से अपने उस वरदान के बारे में बताती हैं जो विवाह से कई वर्ष पहले उन्हें ऋषि दुर्वासा ने दिया था। पत्नी कुंती की बात सुनकर महाराज पांडु के मन को बड़ी शांति मिलती है। महारानी कुंती महाराज पांडु की अनुमति से ऋषि दुर्वासा के वरदान का लाभ लेती हैं। वरदान के प्रभाव से महारानी कुंती धर्म से युधिष्ठिर, पवन देव से भीम और देवराज इंद्र से अर्जुन को जन्म देती हैं। महाराज पांडु की आज्ञा से महारानी कुंती ने माद्री को भी वरदान के जरिए दो बेटों को जन्म देने के लिए तैयार किया। तब माद्री ने दोनों अश्विनी कुमारों के तेज से नकुल और सहदेव को जन्म दिया। महाराज पांडु, महारानी कुंती और रानी माद्री के यही पांच बेटे पांडव कहलाए। अब वन में महाराज पांडु के दिन कुछ सुख से बीत रहे थे। महकती मदमाती वसंत ऋतु में एक दिन महाराज पांडु माद्री के साथ खूबसूरत मौसम का आनंद ले रहे थे। ऐसे में सुहाने मौसम और तरह तरह की खुशबुओं ने महाराज पांडु को मदहोश कर दिया। उनके मन में काम वासना जाग उठी। माद्री के बार बार मना करने पर भी पांडु नहीं माने। काम वासना ने उनको पूरी तरह से घेर लिया था। आखिर ऋषि का श्राप जो फलना था और वही हुआ। श्राप के अनुसार महाराज पांडु की मृत्यु भी उसी हालत में होती है। महाराज पांडु की मृत्यु के लिए माद्री अपने आकर्षण को दोषी मानती हैं। इसीलिए रानी माद्री महाराज पांडु की चिता की आग में खुद को समर्पित कर देती हैं। इस तरह से हस्तिनापुर के राजा और पांडवों के पिता महाराज पांडु और उनकी पत्नी माद्री की बड़ी दुखद मृत्यु होती है।
ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट और ऑडियो स्टोरीज के लिए सुनते रहिए ऑडियो पिटारा।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।